अंधेरे में स्वप्न कथा के माध्यम से कही गई एक सत्य कथा। राजेंद्र कुमार। अंधेरे में होना मनुष्य के स्वभाव में निहित जिज्ञासा के लिए सदैव ही एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है। अपनी प्राकृतिक सत्ता में भी अंधेरा, जहां जगत और जीवन का एक सर्वातिशायी और आवर्ती सत्य रहा, वहीं मनुष्य के जीवन और उसकी खोज दृष्टि के लिए एक समस्या भी। यह अंधेरा मनुष्य की रचनात्मक प्रकृति के लिए जब जब ललकार बनकर उपस्थित हुआ, मनुष्य ने कुछ रचा, कुछ सिर्जा। अल्लामा इकबाल ने संभवतः अंधेरे की ऐसी ललकार सुनकर मनुष्य की अपनी रचना शक्ति को विराट सृष्टिकर्ता की रचना शक्ति के मुकाबले में रखते हुए कहा होगा, सिंगल एंड कामा, टू शफ अफ्रीदी सिराग अफ्रीदम, यानी तूने रात बनाई तो मैंने बनाया चिराग। मनुष्य की रचनाशीलता की इससे अधिक सटीक परिभाषा और क्या हो सकती है कि जब जब कहीं कोई रात बनाए और अंधेरा करे, तब तब मनुष्य चिराग बनाने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ले। लेकिन जब अंधेरा प्राकृतिक भी न हो बल्कि मनुष्य के विरुद्ध स्वयं मनुष्य के द्वारा निर्मित हो, तब चिराग बनाने का काम और भी अधिक चुनौती तलब हो जाता है, क्योंकि तब न तो उस अंधेरे की पहचान प्राकृतिक अंधेरे की पहचान की तरह सरल और सर्वातिशायी होती है, और न ही यह तय रहता है कि उस अंधेरे में दिशा खोजने के लिए किस तरह का चिराग बनाया जाना है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एक ऐसी ही चुनौती तलब स्थिति की कविता है। इस कविता में जिस अंधेरे का चित्र है वह प्राकृतिक अंधेरा नहीं, वह अपने सारे फैलाव में सूनी है राह, अजीब है फैलाव, यह सर्द अंधेरा और ज्यादा गहरा और ज्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव मनुष्य निर्मित अंधेरा है। इसीलिए इस अंधेरे की पहचान मनुष्य के खिलाफ सक्रिय मनुष्य की पहचान से सीधे जुड़ जाती है। कौन है वह जो इस अंधेरे में अपना हित साधता है, और कौन है इस अंधेरे में जिसका सब कुछ दांव पर लगा है, और कौन है वे सहचर जिनको लेकर सामाजिक स्वस्थ दायी आकांक्षा की जा सकती है कि पाऊं मैं नए नए सहचर सकर्मक सचित वेदना भास्कर, यानी अपने वर्ग विभक्त समाज के वर्गीय चरित्र की समझ के बिना इस अंधेरे का पूर्ण रहस्य नहीं खुल सकता। अंधेरे में का संभावित रचना काल सन 1957 से 1962 के बीच माना जाता है। यह वह समय है जब भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति का आवेग जन्य उत्साह धीरे धीरे राजनीतिक यथार्थ जन्य आशंकाओं में तब्दील होने लगा था। जिस सत्ता में भारतीय जनता के व्यापक भागीदारी का विश्वास दिलाया गया था तथा समाजवादी ढंग की समाज रचना का आश्वासन दिया गया था, वह पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई थी। मुक्तिबोध की वर्ग चेतस दृष्टि ने यह बात शुरू में ही भांप ली थी। नया खून नामक पत्र में उन्होंने सन 1955 में लिखा था, इन नोटेड कामा, भारत में पूंजी तीनों ढंग से लगाई जा रही है। अगर भारत में रूसी इस्पात कारखाना सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में खुल रहा है तो अमेरिकी सहायता से टाटा अपने इस्पात के कारखाने का बहुत बड़ा विस्तार कर रहा है, और बिड़ला ब्रिटिश सहायता से नया इस्पात कारखाना खोल रहा है। तीसरे, प्रत्यक्षतः विदेशी पूंजी भी भारत में आ रही है और आएगी। मतलब यह है कि केंद्रीय सरकार के सलाहकारों पर ब्रिटिश और अंग्रेजी पूंजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। समाजवादी ढंग की समाज रचना का तरीका यह नहीं है कि भारत में अमेरिकी पूंजी को 25 वर्ष की गारंटी दी जाए और ब्रिटिश पूंजी के बारे में चूं तक न किया जाए। इससे एक बात सिद्ध होती ही है कि आगामी 25-30 वर्षों के लिए समाजवादी ढंग टाल दिया गया है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 6, समाजवादी समाज या अमेरिकी ब्रिटिश पूंजी की बाढ़ शीर्षक लेख। इस तरह के जिन आशंकाओं को मुक्तिबोध एक सजग और प्रबुद्ध भारतीय नागरिक के रूप में अपने मन में उठा पा रहे थे, उन आशंकाओं को वे एक संवेदनशील और दायित्व चेता भारतीय कवि के रूप में अपनी रचना में गतिशील प्रेरणा का अंग बनाकर रखना चाहते थे। इस तथ्य का साक्षी है वह पत्र जो मुक्तिबोध दिन 9 दिसंबर 1963 में अग्नेशका सोनी को लिखा था। इस पत्र में अपनी कविता अंधेरे में के फलक पर उभारे गए वातावरण की कैफियत बताते हुए मुक्तिबोध ने संकेत किया था, इन नोटेड कामा, उसमें एक आशंका है, अंधेरी आशंका का वातावरण है, कहीं सारे भारत में ऐसा वैसा न हो, इन नोटेड कामा, मुक्तिबोध रचनावली खंड 6। यह भी आकस्मिक नहीं है कि कल्पना 1964 में जब यह कविता छपी तो उसका शीर्षक था आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में। आखिरकार किस विशेष मनस्थिति के प्रवाह में मुक्तिबोध ने अपनी इस कविता को वह शीर्षक दिया होगा। ध्यान देना चाहिए कि इस कविता के संभावित रचनाकाल से लगभग एक दशक पूर्व अज्ञेय अपनी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप लिख चुके थे। नदी के प्रवाह के बीच द्वीप की स्थिरता स्थिर समर्पण है हमारा, अज्ञेय के यहाँ व्यक्तित्व की विशिष्टता का प्रतीक है। अज्ञेय द्वीपत्व का परमुग्ध होते हैं और उसके साथ अपने व्यक्तित्व के तादात्म्य की स्पृहा करते हैं। इसके विपरीत मुक्तिबोध के यहाँ द्वीपत्व को लेकर आशंका है, क्योंकि उनकी नज़र में स्थिरता को व्यक्तित्व की विशिष्टता का प्रतीक मानने का मतलब है यथास्थितिवादी मानसिकता को प्रश्रय देना और जनक्रांति की तैयारी में अवरोधक बनना। मुक्तिबोध देख रहे थे कि भारत की अधिसंख्य जनता गरीबी के अनियंत्रित प्रवाह में थपेड़ी खा रही है और इस प्रवाह के बीच भारतीय समाज में अमेरिकी टापू समृद्धि के द्वीप बन रहे हैं। और एक बहुत बड़ी विडंबना मुक्तिबोध को यह प्रतीत हुई कि हमारे मध्यवर्ग की आंखों में ही यह द्वीप स्वप्न भर कर तैर रहे हैं, उसी को परिणित यह हुई। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सीमा को हकाल दिया और अंततः जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए। इस विडंबना के विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही शायद उन्होंने अपनी कविता के शीर्षक में अंधेरे में के साथ आशंका का द्वीप भी टांग दिया होगा। बाद में हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि पूरी कविता अपने कथ में अनुभव के जिस द्वंद्वात्मकता से गुजर कर संभव हुई है, आशंका का द्वीप से तो उसका केवल एक पक्ष द्योतित होता है, इसके विरुद्ध उसका दूसरा पक्ष भी है। स्तंभ शून्य में तैरती है जगत समीक्षा, जो मध्यवर्गीय संस्कारों के रहते इतनी भी असह्य हो, लेकिन जिसके बारे में लिया गया मूल निर्णय यही है, नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े चाहे जो ही भले ही। चूंकि पूरी कविता मध्यवर्गीय संस्कारों के अतिक्रमण के द्वारा जनक्रांति में योग देने लायक बनने के लिए किए गए संघर्ष की कविता है, चूंकि आशंका और आश्वस्ति, आशंका और संकल्प के द्वंद्व में कविता के चेतनागत अग्रसरता मूलतः विवेक प्रक्रिया क्रियागत प्रगति की आश्वस्ति और परम अनिवार्य आत्मसंभव अभिव्यक्ति की खोज का जोखिम उठाने के संकल्प की ओर है। इसलिए भी आशंका के द्वीप का अंधेरे में के साथ शीर्षक में होना मुक्तिबोध का आवश्यक न लगा हो तो यह उचित ही है। अंधेरे में के कथ्य के विचारधारात्मक अभिप्रायों को लेकर हिंदी के आलोचकों के बीच काफी विवाद है, लेकिन सहमति के एक न्यूनतम बिंदु पर प्राय सबने इसमें खोज और संघर्ष के स्वरों की आद्योपान समाहिति स्वीकार की है। खोज एक ऐसी वृत्ति है जिसमें साहित्य, दर्शन और विज्ञान प्राय इन तीनों का साझा रहा है। साहित्य और दर्शन की भारतीय परंपरा में इसे ज्यादातर आध्यात्मिक और रहस्यवादी संदर्भ में ही विशेष महत्व मिला है और विज्ञान की परंपरा में भौतिक तथा पदार्थिक ज्ञान के संदर्भ में। परंपरा के इस छोर पर जहां से हमने वस्तुतः आधुनिक होना महसूस किया, इस खोज वृत्ति का उस तरह संवेदना और ज्ञान के स्तर पर दो फांक बने रह पाना कठिन होने लगता है। मुक्तिबोध इस कठिनाई को अपनी चेतना में पूरी तरह झेलते हैं, इससे उनका कवि व्यक्तित्व जटिल होता है, किंतु जागृत बुद्धि और प्रज्वलित धी भी अकारण नहीं कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान जैसे पद हमें किसी मध्यकालीन कवि या काव्यशास्त्री के यहाँ नहीं मिलते, आधुनिक कवि के यहाँ मिलते हैं। और इस पर भी विशेष उल्लेखनीय यह कि जिस आधुनिक कवि के यहाँ मिलते हैं वह मुक्तिबोध ही है, निराला भी नहीं। यह केवल मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के अंतर का परिणाम नहीं है, बल्कि आधुनिक बोध के अंतर्गत भी मात्र विचार से विचारधारा की ओर बढ़ते हुए यथार्थ की ठोस जमीन पर आने की प्रक्रिया की परिणति है, जिसको मुक्तिबोध ने कहा वेग प्रक्रिया क्रियागत परिणति। मध्यकालीन तक इस सीमा रेखा जहां तक आती है वहां तक ज्ञान शब्द अपनी पावनता में, अपने परंपरागत पावित्र्य में पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ज्ञान भी वहां संवेदना से बाहर नहीं है, भक्ति और आध्यात्मिक संवेदना के वृत्त में ही है, वह निरा पदार्थीकृत होता तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है। मगर ज्ञान का आधुनिक प्रत्यय तो तथ्यात्मक होने की प्रक्रिया में ही विकसित हुआ है। साहित्य के रचना होने की शर्त यह है कि नितांत तथ्यात्मक वह हो नहीं सकता, किंतु इसके साथ ही अब यह तय है कि तथ्यात्मकता ने हमारे अनुभव को प्रत्यक्ष यथार्थ का जो आधार दिया है उसे तज कर चलने में भी साहित्य की कोई गति नहीं है। इसलिए आधुनिक कवि को ज्ञान और संवेदना दोनों की चिंता करनी पड़ती है। इसी चिंता के कारण निराला अपने राम को जिस शक्ति की खोज में प्रवृत्ति दिखाते हैं उसके लिए उन्हें मौलिक कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यह आधुनिक विचार का वह धरातल जहाँ कल्पना की स्वायत्तता यानी अयथार्थ की नहीं कल्पना की मौलिकता की गुहार है। मौलिकता भी दोहरे अर्थों में मूलवर्तिता यानी मूल यानी परंपरा की जड़ों से विच्छिन्न न होना के अर्थ में भी और नवीनता यानी समसामयिक के अर्थ में भी। मूलवर्तिता के नाम पर निराला की कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता भी खप जाती है, लेकिन मुक्तिबोध विचार से भी आगे विचारधारा तक पहुँचे हुए कवि हैं। समाज में मानवीय शक्ति की खोज में जब वे विकल होते हैं तो अमूर्त विचार उन्हें सहारा नहीं दे पाते, थाम नहीं पाते। उनके सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, और तब वे एक ठोस विचारधारा के सहारे अपनी खोज में अग्रसर होते हैं। किसी भी विचारधारा के साथ यांत्रिक होने का जो खतरा रहता है, मुक्तिबोध उसे पूर्णतया पहचान चुके होते हैं। विचारधारा को यांत्रिक प्रक्रिया को नहीं बल्कि मानवीय प्रक्रिया का अंग बनाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी समाज रचनात्मक गति देने के लिए हृदय और बुद्धि दोनों की परस्पर पूरकता का महत्व स्वीकार करते हैं। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान के स्तरों का एकीकरण उनके काव्य बोध में इसी अर्थ में अपने लिए जगह बनाता है। यह एकीकरण हृदय और बुद्धि के द्वंद्व के साथ समाधान से सर्वथा भिन्न है जो कामायनीकार को उपलब्ध हुआ था। कामायनी के मनु का आत्मसंघर्ष उसको द्वंद्वातीतता की स्थिति कैलाश में पहुंचाकर समाप्त हो जाता है। मन ने कुछ कुछ मुस्किया कर कैलाश और दिखलाया, बोले देखो यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। ऐसी द्वंद्वातीतता मनु की वैयक्तिक सिद्धि तो हो सकती है, लेकिन उसकी सामाजिक मूल्यवत्ता में मुक्तिबोध के गहरा अविश्वास था। मनु के वैयक्तिक सिद्धि का स्वरूप यह है, मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, जबकि मुक्तिबोध को वह सामाजिक शिष्ट अभिष्ट है जो इस प्रक्रिया का अंग हो। विवेक चलाता तीखा सारंदा, चल रहा वसूला छीले जा रहा मेरा या निजत्व ही कोई, और इसमें मैं सक्रिय होकर हम में इस तरह तब्दील हो जाए कि यह विश्वास प्राप्त कर ले, समस्वर समताल सहानुभूति की सनसन कोमल, हम कहाँ नहीं हैं सभी जगह हम निजता हमारी। कमायनी के मनु की वैयक्तिक सिद्धि हद से हद उसकी प्रक्रिया का अंत ही हो सकती है। इसी प्रक्रिया का आरंभ बन पाना उसके लिए संभव नहीं रह जाता। अंधेरे में काव्य नायक के लिए वैसी द्वंद्वातीतता सामाजिक विकास की यथार्थ प्रक्रिया से कतई मेल खाने वाले नहीं होती, इसलिए मुक्तिबोध के लिए वह अर्थहीन है। कामायनी के अंत में आदर्श मनुष्य की परिकल्पना यह है कि वह चेतना का साक्षी मानव हो, निर्विकार हस्ताशा और सब भेद भाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाना बनाता, या कह रहे हैं कि यह मैं हूँ। यह है प्रसाद के मनु के माध्यम से की गई मनुष्य की अस्मिता की खोज, और इस खोज में जो हाथ लगा वह वस्तुतः आदर्श मनुष्य नहीं बल्कि अमूर्त मनुष्य है, क्योंकि अपने मूर्त भौतिक अस्तित्व में मनुष्य स्वयं चेतन है, चेतन का साक्ष्य मात्र नहीं। दुख सुख को अलग से वह अपने लिए दृश्य नहीं बनाता, दुख सुख में स्वयं दृश्यमान होता है। मुक्तिबोध जब लिखते हैं, आत्मा में भीषण सचित वेदना जल उठी दहका, तो ऐसे दृश्यमान मनुष्य का पता देते हैं, मनुष्य और अधिक स्फूर्ति अर्जित करता है। मेरा यह चेहरा धुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल में, द्वंद की इस स्थिति में आकर चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। अंधेरे में कविता के आरंभ में दीवार पर पपड़े उचटने से जो आकृति नुकीली नाक भव्यलाट दृढ़ हनु उभरती है, वह भी काव्य नायक को मनु का आभास देती है, किंतु इस विकल जिज्ञासा के साथ कि कौन मनु, एक यह जिज्ञासा एक ओर तो काव्य नायक के मन की अनिश्चयात्मकता की स्थिति की व्यंजक है, दूसरी ओर उसकी दृष्टि की इस निश्चयात्मक प्रतीति की भी कि यह मनु कामायनी जैसे महाकाव्य द्वारा परिचित कराया गया मनु नहीं हो सकता। दरअसल यह एक प्रकार से कामायनीकार के मनु से असंतुष्ट होकर उसके अपेक्षाकृत अधिक सही और सार्थक विकल्प के रूप में कल्पित मुक्तिबोध के मन का अभिष्ट मनु है। इसकी मूल प्रकृति है निरंतर द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में रहना। कविता के शुरू में हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव हुआ है तो कविता के आखिरी पड़ाव पर भी उद्विग्न ज्ञान तनाव हुआ है। वह न खुद द्वंद्वातीत होना चाहता है और न काव्य नायक या वाचक को द्वंद्वातीत होने देना चाहता है। अपनी द्वंद्वात्मक प्रकृति के कारण यह मनु कामायनी वाली समरसता के आदर्शों से अपना पथ अलग कर देता है। वह अंधेरे में कि काव्य नायक को स्थित प्रज्ञ बनाने के लिए नहीं बल्कि गति प्रज्ञ बनाने के लिए आया है, क्योंकि वह व्यक्तिवाद की अहमग्रस्त प्रवृत्तियों जो कि बकौल मुक्तिबोध पूंजीवाद के ह्रासग्रस्त स्वरूप में उत्पन्न हो सकती है का प्रतीक बनकर नहीं रह जाना चाहता। वह अहंकार और जन विरोधी प्रभुत्व लालसा जो पूंजीवाद की प्रधान विशेषताएं हैं के विरुद्ध संघर्षशीलता का जन चरित्री प्रारूप रखना चाहता है। इसीलिए वह खुद भी अपने को कहीं भी एक स्थिति में नहीं निरंतर एक गति विदुल्ल हरिल वही गतिमयता में रखता है। शुरू में वह अनजानी अनपहचानी आकृति के रूप में अपना आभास कराता है, फिर लगातार स्पष्टतर होने के क्रम में रूपांतरित होता जाता है। फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप होती है वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनाने लगती है। अंधेरे में कि काव्य नायक की पूरी यात्रा में वह बाहर और भीतर से उसका दिशा निर्देश करता है। बाहर वह कभी सलिल के तमश्याम शीशे में कोई शीत आकृति बनकर उभरता है, तभी कुहरे के सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक बनकर। भीतर वह हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव आत्मा की प्रतिमा बनकर उभरता है। बाहर और भीतर से घनीभूत होती उसकी आत्मीय पहचान कविता के अंत में एक व्यापक समाज रचनात्मक सोशियो क्रिएटिव मूल्य में परिणत होती है, क्योंकि वह क्रांतिधर्मी जनयुद्ध के साथ एकात्म होने की प्रेरणा देती है। एकाएक एक व्यक्ति सामने गलियों में सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है, वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। वह व्यक्ति दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता तथा जिसे देखकर शुरू में प्रश्न उठा था कौन मनु, अब वही जन है। इतना ही नहीं, शुरू में जो कोई अनजानी अनपहचानी आकृति था अब वही अनोखी निज समृद्धि का परम उत्कर्ष है। कवि मुक्तिबोध द्वारा अंधेरे में के काव्य नायक की समस्या के मूल बिंदु को अनजानी से अनखोजी तक स्थानांतरित करके अपना विशेष अर्थ गर्भित है। जीवन और जगत के अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष को हमारे मानस में जो तेजो प्रभाव में अन्विति ग्रहण करनी चाहिए वह सुविधावादी आत्मग्रस्तता के हमारे मध्यवर्गीय संस्कारों के दबाव तले अनजानी रह जाती है। इसलिए पहली समस्या तो यही है कि उसके वास्तविक परिज्ञान के लिए आत्मसंघर्ष किया जाए, लेकिन फिर मात्र परिज्ञान भी सामाजिक संदर्भ संघर्ष के संदर्भ में कोई अंतिम स्थिति नहीं है। उसके किसी पाए हुए स्तर में संतुष्ट होकर रह जाने का कुछ अर्थ नहीं होता। तभी तो असंतोष मुझको है गहरा शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत। उसकी सार्थकता तो एक अनवरत प्रक्रिया में चरितार्थ होने से ही होगी। यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है मुक्तिबोध के यहाँ, कभी न खत्म होने वाली कविता की धात्री है। इसी प्रक्रिया में अंधेरे में का काव्य नायक यह जाना जाता है जान पाता है कि जिस समाज में वह है उसमें उसके होने का उसके अस्तित्व का अर्थ क्या है, और फिर यह भी इस सवाल केवल अपनी भूमिका को जान लेने भर का नहीं है बल्कि अविरत उसकी सक्रियता की खोज करने का है। परम अभिव्यक्ति अविरत घूमती है जग में, सक्रिय होना भी तो अभिव्यक्ति होना है। इस परम अभिव्यक्ति को अनिवार्य और आत्मसंभव कहा गया। अनिवार्य इसलिए कि समाज के ऐतिहासिक विकास क्रम द्वारा अर्जित आघूर्ण मोमेंटम इसके पीछे है। इसे कोई प्रतिगामी शक्ति कितना भी बाधित करे लेकिन रोक नहीं सकती। और आत्मसंभव इसलिए कि जो रचनात्मक संघर्ष इसे रूप देता है वो तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व्यक्ति को खुद करना है। यहाँ यह भी उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि मुक्तिबोध के संदर्भ में जिसे हम उनका आत्मसंघर्ष कहते हैं वह वास्तव में उनके रचनात्मक संघर्ष और सामाजिक संघर्ष के योगफल का नाम है। संघर्ष की अवधारणा को वैज्ञानिक स्वरूप देने वालों में आधुनिक काल के तीन मनुष्यों डार्विन मार्क्स और फ्रायड का को विशेष श्रेय दिया जाता है। डार्विन के विकासवाद, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत क्रमशः अस्तित्व के लिए संघर्ष, मन संघर्ष तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों ने मनुष्य की सोच और व्यवहार की दिशाएं ही बदल डाली। हिंदी के आधुनिक साहित्य का अध्ययन और विश्लेषण इस क्षेत्र की एक विडंबना ही कही जाएगी कि आधुनिक रचना अनुभव में उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों के समग्र प्रभाव की चिंता करने के बजाय सामान्यतया उन्हें क्रमशः तीन वादों प्रकृतिवाद, मनोविश्लेषणवाद और प्रगतिवाद के खेमे में बांट कर देखा गया। मुक्तिबोध का काव्य ऐसा अनर्गल बंटवारा करके चलने वालों के लिए आंख खोलने वाला साबित हो सकता था, लेकिन यहाँ भी एक दुर्घटना यह हुई कि मार्क्सवाद बनाम अस्तित्ववाद रहस्यवाद के बीच ही उनकी खींचातानी होती रह गई। जबकि मुक्तिबोध अपने अभिव्यक्ति का मार्ग तलाशने के लिए ज्ञान विज्ञान के अनेकानेक स्रोतों को मत डालना चाहते थे। बहुत बहुत तबीयत होती है कि ऐसा देशी विदेशी साहित्य हाथ में आ जाए जिसके द्वारा मेरी अपनी समस्याओं पर कुछ प्रकाश पड़े, कुछ राहत मिले, कोई मार्ग प्राप्त हो। कावन मुक्तिबोध रचनावली खंड 4 अकेलापन और पार्थक शीर्षक लेख। अपने एक विस्तृत लेख समीक्षा की समस्याएं में मुक्तिबोध आधुनिक रचनाकारों की संवेदनात्मक ग्रहणशीलता के संबंध में सीधे सीधे प्रश्न समीक्षकों के सामने रखते हैं। ज्ञान के कण जहां भी मिले, जहां भी प्राप्त हो, उन्हें तुरंत अपने आकुल संवेदनों द्वारा उठाकर कृतज्ञ होना और मुक्त भाव से उन्हें स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? मुक्तिबोध रचनावली खंड 5। इसलिए अस्तित्ववाद और रहस्यवाद के आच्छादन से मुक्त संघर्षशीलता का तेज यदि मुक्तिबोध की कविता में देखना है तो केवल मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य में उसकी जांच परख से काम न चलेगा, बल्कि उसे विकासवाद और मनोविश्लेषणवाद के परिप्रेक्ष्य में भी रखकर जांचना होगा। संघर्ष मुक्तिबोध की कविता का केंद्रीय तत्व है। संघर्ष को एक ठोस भूमि प्रदान करने वाली विचारधारा के रूप में उन्होंने मार्क्सवाद को स्वीकार किया। मार्क्स ने दुनिया को बदलने के लिए दुनिया को देखने और समझने की जो दृष्टि दी उसी की ओर इशारा करती प्रतीत होती है मुक्तिबोध की कविता की यह पंक्ति। स्तंभ शून्य में तैरती जगत समीक्षा की हुई उसकी, लेकिन इस जगत समीक्षा में विकासवाद और मनोविश्लेषणवाद भी जाने अनजाने सहारा देने आ जाए तो मुक्तिबोध को उससे सर्वथा परहेज हो ऐसा नहीं लगता। विकासवाद की कई उपपत्तियों को अपने दर्शन का आधार बनाने में स्वयं मार्क्सवाद ने परहेज नहीं किया और न मार्क्सवाद से प्रेरित प्रभावित प्रगतिवाद। और इस सिलसिले में मुक्तिबोध के मन में बहुत स्पष्ट है कि दार्शनिक दृष्टि से प्रगतिवाद विकासवाद में विश्वास रखता है, लेकिन वह डार्विन का वैज्ञानिक विकास नहीं है जो कार्य कारण को यांत्रिक अर्थ देता है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 5 प्रगतिवाद एक दृष्टि। प्रगतिवादियों ने मनुष्य की उद्दाम आदिमता को वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए यांत्रिक तौर पर डार्विन का जो सहारा लिया उसका हर्ष सर्वविदित है, लेकिन डार्विन के विकासवाद के अंतर्गत योग्यतम की जीवितता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम अस्तित्व के लिए संघर्ष स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को आस्था के जिस जैविक व्यवस्था से जोड़ती है मुक्तिबोध उसको यांत्रिक अर्थ में कत्ता ही नहीं लेते। अलबत्ता सांस्कृतिक अर्थ में उसके कुछ समाज रचनात्मक सोशियो क्रिएटिव संकेत मुक्तिबोध की कविता में पाए जा सकते हैं। कमाने की विवेचना करते समय मुक्तिबोध ईडा के मुख्य सिद्धांतों के रूप में डार्विन के विकासवाद का अक्ष देख चुके हैं और उसकी तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा था वह जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय वाले सिद्धांत को विश्व का चिरंतन नियम मानता है, किंतु पूंजीवादी नियम विधान के प्रतिकूल पाए जाने वाले के लिए उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 4। इसलिए मुक्तिबोध विकासवाद के वैसे अक्ष से बचते हैं, विशेष रूप से अभिव्यक्ति को जब ये परम और अनिवार्य कहकर निरूपित करते हैं तो इसलिए भी कि मानव समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में जो शक्तियां रहती हैं हमें से हरेक की सोच और आचरण में अनिवार्यता उन्हीं शक्तियों में से किसी न किसी की अभिव्यक्ति होती है। दूसरे शब्दों में अभिव्यक्ति की भी अपनी अपनी वर्गीय प्रजातियां और अपने अपने समुच्चय होते हैं। इनके साथ प्राकृतिक वरण नेचुरल सेलेक्शन का नहीं सामाजिक वरण सोशल सेलेक्शन का सिद्धांत लागू होता है। इनमें से जो सामाजिक विकास के लिए अनुकूल परिवर्तन की क्षमता से रहित होती है उनका अस्तित्व मिटना ही मिटना है। अंधेरे में घरात में निकलने वाला जुलूस अनुकूल परिवर्तन की क्षमता से रहितता की ऐसी यह विभक्ति है, इसीलिए उसके बारे में कहा गया है कि यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की, और भयानक घन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, जो योग्यतम फिटेस्ट संघर्ष की दिशा में पूर्ण सक्षम या मार्क्सवादी शब्दावली में सर्वहारा की संघर्ष चेतना की अभिव्यक्ति होगी, वही अभिव्यक्ति परम है और वह अनिवार्य है, यानी वही सर्वाइव करेगी। सामंती अवशेषों वाले अपने वर्तमान पूंजीवादी समाज में आज हम स्वतंत्र होकर संतुष्ट होकर जिस वैयक्तिक विकासवाद को फलता फूलता देख रहे हैं, उसमें जो योग्यतम उसी को मान लिया है गया है, जो अधिकार संपन्न मंत्री उद्योगपति और विद्वान है, और जो आतंककारी बाहुबल वाला है, हत्यारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद भक्तिबोध की कविता इस वैयक्तिक विकासवाद के खतरे के प्रति आगाह करती है। मगर इस तरह नहीं कि उससे हम भयभीत होकर रह जाएं, बल्कि इस तरह कि उसके विरुद्ध अपने को तैयार करते हुए उसके अंत की आशा पा सके। जहां तक फ्रायडकृत मनोविश्लेषण और मन संघर्ष की व्याख्या का संबंध है, मुक्तिबोध उसे सैद्धांतिक रूप में उतना नहीं लेते जितना एक तकनीक के रूप में, बल्कि कहना चाहिए एक दोहरी तकनीक के रूप में, अंधेरे में के काव्यनायक मध्यवर्गीय व्यक्ति के व्यक्तित्वांतरण की तकनीक के रूप में भी, और स्वयं अपनी कविता के फॉर्म को निर्धारित करने वाली तकनीक के रूप में भी। अंधेरे में का काव्यनायक अपनी चेतना या अपने मन की जिन अलग अलग स्तरों पर क्रियाशील मिलता है, वह प्रयाण द्वारा विवेचित मन रचना के ही स्तर है। रश्मि, खो, गुहा, खड्डे, ये सब व्यक्ति मन के अचेतन स्तर के वाची। वैसे अक्सर सीधे सीधे भी अचेतन शब्द का प्रयोग मुक्तिबोध करते हैं, गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। मध्यवर्गीय संस्कार भीरुता, सुविधा लुलुपता तथा असुरक्षा की भावना आदि के कारण व्यक्ति की चेतन स्तर की आकांक्षाएं अचेतन में दब जाती हैं। अनुभव, वेदना, विवेक, संघर्ष, निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे हो जाने देने में व्यक्ति जो जब अपनी खुद की वर्गीय कमजोरियों का हाथ होने का पता चलने लगता है, तो उसी से उसके मन के चेतन स्तर पर आत्मग्लानि का यह स्वर उभरता है, हाय हाय मैंने उन्हें गुहा वास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया। आत्मग्रस्त व्यक्तित्व द्वारा अपनी सामाजिकृत रूप पाने की आकांक्षा चेतन स्तर पर तृप्त नहीं हो पाती तो अचेतन स्तर पर ढकेल दी जाती है, वहां से वह अवचेतन में उभरती है। अवचेतन ही वह मंच है जहां चेतन अचेतन का द्वंद अभिव्यक्ति पाता है। तिलक्ष्मी, खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से। अचेतन का स्वरूप मुक्तिबोध की दृष्टि में फ्रायड से किंचित भिन्न है, परिष्कृत है। मैं अपनी एक बात स्पष्ट कर दूं कि फ्रायड का सबकॉन्शियस केवल दमित इच्छाओं का पुंज मात्र है। मेरे लिए वह केवल यही न होकर प्राकृत शक्ति का एक गतिमान प्रवाह है, जिसके तत्व समाज से प्राप्त होते हैं, संस्कार द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा। यह प्रवाह अपने शक्ति रूप में व्यक्तिगत जेनोटाइप होता है, परंतु प्रवाह में बहने वाले तत्व सामाजिक ही होते हैं। एनोटेड कहां पर? मुक्तिबोध रचनावली खंड 5, साहित्य में व्यक्तिवादी आदर्श। यह अवचेतन ही अंधेरे में की सारी फैंटेसी की रंगभूमि है, यही घूमता है। तुलस्मी, खो में गिरफ्तार को ये गहन रसमय अंधकार ध्वनिसा, अस्तित्व जनाता अनिवार्य को एक, यही घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, यही दिया जल रहा है, पीता लोक प्रसार में काल गल रहा है। यहीं से व्यक्ति अपने संस्कारों की जंग खाई जमी हुई जबरन चिटखनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता है और झांकता है बाहर। यही है वह गैलरी जहां से वह मृत दल की शोभा यात्रा देखता है और यहीं आ जाता है। वह पागल भी जो छोड़ सिर फिरापन बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद कोई गान, उद्भूत हो मैं वह नीली झील जिसमें प्रतिपल काटता रहता अरुण कमल एक, वह गिरुआ मौसम जिससे मुड़ते हैं अंगार, बहती है वेदना नदियां वह रात, इसकी किसी अनापेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो मनोहर मुख से जीवन भर के लिए, और उसमें रची बसी रह जाती है। अज्ञात प्रणयनी की यादें उन सबके लिए यह निर्बाध अवसर है, विपुल अर्थसंगत अवकाश है। बीच बीच में यही टॉल्स्टॉय, अजीर्गत, तिलक, गांधी, ये सब भी मिथक और इतिहास की सीमाओं को लांघते फलांगते बदले हुए समाज में अपनी वर्तमानता का जायजा लेने ही नहीं बल्कि स्वयं अपने निर्मम और निस्संग आत्मसाक्षात्कार की भी चुनौती झेलने चले आते हैं। मिथक और इतिहास की अपनी संवेदना में लेकर इनकी तटस्थता से उनको पुनर्विचार और आलोचना का विषय बनाने के लिए वह अनूठी कला मुक्तिबोध की अपनी ईजाद हुई है। दरअसल वह सब जिसमें अंधेरे में फैंटेसी रची जाती है मात्र विवरणों का जंजाल नहीं है, यह अंधेरे में की काव्यनायक और उसके रचयिता के आंतरिक व्यक्तित्व में सामाजिक तत्वों का रचनात्मक संश्लेषण है। अपने एक लेख साहित्य में व्यक्तिगत आदर्श मुक्तिबोध ने कलाकार के आंतरिक व्यक्तित्व को समाज वृक्ष का फूल कहा है और उसका सौंदर्य उद्घाटित करते हुए लिखा है कि उसकी विकास तृष्णाओं का संगठित और एकीकृत पुंज है, जो तृष्णाएं एक ओर उसकी अवचेतन शक्ति रहते हुए आदर्श स्वप्न या कह लीजिए कल्पना स्वप्न बनकर चेतना मार्ग द्वारा समाज प्रकाश प्राप्त कर लेती है, तो दूसरी ओर समाज व्यक्ति द्वंद्व में व्यक्ति को समाज के ऊपर और समाज को व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कराती है। अंधेरे में की फैंटेसी अत्यंत आदर यथार्थवादी रचना दृष्टि का अंग बने रहने में इसलिए सफल है क्योंकि वह अपने गर्भ में विकास तृष्णाओं को पोषने में सक्षम है। अपने फैंटेसी शिल्प को विकास तृष्णाओं के पोषण का माध्यम बनाने की भरपूर चिंता मुक्तिबोध को रहती है क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि यही विकास तृष्णाएं अपनी अवचेतन आदिम स्थिति रूप में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है और आदर्श स्वप्न बनकर मोहित करती, तर्क प्रदान करती और सक्रियता की ओर बढ़ा ले जाती है। इसी अर्थ में वे उसकी भावना बुद्धि, ब्रेन ऑफ पैशन हो जाती है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 5। अंधेरे में की फैंटेसी अपनी बुनावट में मूलतः स्वप्न कथा मूलक है। इस स्वप्न कथा मूलकता का मुक्तिबोध की कविता में केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के फौरन बाद के दिनों में नए भारत का जो भी चरित्र कल्पना में लाया जाता था उसे सामान्यतया गांधी के सपनों का भारत या नेहरू के सपनों का भारत कहने का शोर बरपा हुआ था, लेकिन ये सपने यथार्थ से कोसों दूर होते हुए खुद स्वप्न दृष्टाओं के लिए किस तरह अजनबी होने लगे उसका बहुत सीधा हवाला मुक्तिबोध की एक अन्य कविता भविष्यधारा, संभावित रचनाकाल 1958 के बाद की इन पंक्तियों में मिलता है। एक जमाने में जो मेरे ही थे बहुत स्वप्न दृष्टा थे, कवि थे, चिंतक और क्रांतिकारी थे, क्या हो गया तुम्हें अब प्रतिदिन कर उपलब्ध सत्य अब खो देते अगले क्षण ही निज द्वार अनुसंधानित होते अंतर्निहित बाहरी जिंदगी के हो हल्ले मेले में अपनी अनुभव के पुत्र गवा देते हो क्यों बिछड़े तुम अपने हुए से। प्रतिदिन का उपलब्ध सत्य और अगले क्षण ही यहाँ खो देने की आशंका हो और यह आशंका अंधेरे में कविता में और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है क्योंकि सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग इसमें ज्यादा चटक है, ज्यादा गाढ़ा। वहाँ मुक्तिबोध के कवि का ऐतिहासिक दायित्व यह नजर आता है कि वह हर उपलब्ध सत्य को निजी ज्ञान और संवेदना में इसी क्षण सहेजने का कोई रचनात्मक उपक्रम करे। मुक्तिबोध इसी उपक्रम के तौर पर स्वप्न कथा मूलक शिल्प को ग्रहण करते हैं। स्वप्न कथा के माध्यम से अंधेरे में कविता में भी तथाकथित स्वतंत्रता पाने के बाद के भारत की सत्य कथा कहते हैं। सत्य को स्वप्न के आवरण में भी सकर्मक प्रेम की अतिशयता के रूप में संरक्षित कर लेना चाहते हैं ताकि किसी भी अगले क्षण वह खो न जाए। फैंटेसी को मुक्तिबोध ने एक जगह यथार्थ पर पड़े जीने आवरण की संज्ञा दी है, इससे भी उनके उपर्युक्त प्रयोजन की पुष्टि होती है। मुक्तिबोध हमें वो स्वप्न नहीं दिखाते जो रोमानी उत्साह के चलते गांधी और नेहरू के सुखद स्वप्न के रूप में चर्चित थे। मुक्तिबोध हमें वे स्वप्न दिखाते हैं जो गांधी और नेहरू और उनकी विरासत के दावेदार राजनेताओं की वास्तविकताओं को हमारे दृष्टि में ला सके। अंधेरे में का प्रामाणिक अनुभव यह है कि टूटते हैं धोखे से भरे हुए सपने। धोखों से भरे हुए सपनों के विरुद्ध अंधेरे में का कवि वास्तविकताओं से भरे हुए सपनों के लिए ललकारता है और अपने काव्यनायक को उन्हीं में गुजारता है। तब उसके काव्यनायक को अनुभूति होती है कि रक्त में बहती है ज्ञान की किरणें, विश्व की मूर्ति ही आत्मा में ढल गई। और तब आता है वह दृश्य जो इतना आत्मीय है कि उसकी गतिपूर्ण सक्रियता में सब शामिल है। मकानों की छत के गार्डर, खंभे, दादा का सोंटा, कक्का की लाठी, बच्चे की पेपे और मुन्ने की स्लेट पट्टी तक अपने वैविध्यपूर्ण स्वप्न दृश्यों की सर्वत्र ऐसी आत्मीयता से बुलने का मुक्तिबोध का ढंग इतना जीवंत है कि सहज ही विश्वास का निभूत हो जाता है। यह कथा नहीं, यह सब सच है। हाँ भाई, अध्यात्मवादी दर्शनों में सत्य को प्राय निरपेक्ष एब्सोल्यूट मानने की परंपरा रही। इसीलिए यदि वहाँ स्वप्न को सत्य के विरोध में रखकर देखा जाए तो स्वाभाविक ही है स्वप्न का मिथ्यातत्व वहाँ प्राय सर्वस्वीकृत है। उसको लेकर वहाँ ज़्यादा बहस नहीं है, लेकिन यथार्थवादी भौतिकवादी दर्शनों में वह खासी बहस का विषय रहा है। मुक्तिबोध की कविता में फैंटेसी के प्रयोग को लेकर यथार्थवाद के आग्रही समर्थकों में भी इस बहस का एक रूप देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने फैंटेसी शिल्प की प्रकृति को ही यथार्थ विरोधी बताया तो कुछ ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत बताई कि आखिर मुक्तिबोध की क्या बाध्यता थी जो स्वयं यथार्थवादी होते हुए भी उन्होंने फैंटेसी जैसा और यथार्थवादी शिल्प अपनाया। इस संबंध में सबसे पहली बात तो यह है कि मुक्तिबोध फैंटेसी को सिरे से यथार्थ विरोधी प्रकृति का मानकर चलने के पक्ष में कभी नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटेड कामा, फैंटेसी में जो कथा प्रस्तुत होती है और कथा के अंतर्गत जो पात्र, चरित्र और कार्य प्रस्तुत होते हैं वे सब प्रतीक होते हैं वास्तविक जीवन तथ्यों के। नोटेड कामा यानी एक पुनर्विचार। स्मरणीय कि फ्रायड ने भी वास्तविक जीवन तथ्यों के स्वप्नगत प्रतीकों की अपने मनोविश्लेषण शास्त्र में लंबी फेहरिस्त दी है। वह फेहरिस्त भी स्वप्न व्यापार को निरा यथार्थ विरोधी होने के आरोप में से बरी करती है। मुक्तिबोध अपने समय के वास्तविक जीवन तथ्यों को अपनी कविता में एक ऐसी सांस्कृतिक उछाल के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मिथक और इतिहास, व्यष्टि और समस्त, अतीत, वर्तमान और भविष्य के सीमांत टूटे और दिक्काल के अक्षांश देशांतरों को लांघकर एक विश्व चेतना के रूप में इस तरह आ जुटे कि लगे असहसा स्वयं बोध विश्व चेतना सा कुछ नवशक्ति देता है। मुझे याद आते हैं इस उद्देश्य को साधने के लिए मुक्तिबोध को फैंटेसी का स्वप्न कथा मूलक रूप विशेष उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि स्वप्न दिक्काल में सब कुछ को उलटने पुलटने का और सब कुछ को संयोजित करने का तर्क एक साथ जुटा देता है। मुक्तिबोध की अभिप्सा है कि फैंटेसी को सत्य के ज्ञान का कलात्मक माध्यम बनाया जा सके, ऐसे ज्ञान का जो केवल काल सापेक्ष ही नहीं स्थिति सापेक्ष भी होता है। एक स्थान पर वे लिखते हैं एंटोट कामा, ज्ञान केवल काल ही से मर्यादित नहीं वह स्थिति से भी मर्यादित होता है और उसी स्थिति के भीतर केवल वर्गीय और सामाजिक स्थिति ही नहीं वरन व्यक्ति के अपने निज विशिष्ट स्थान का भी समावेश होता है। एनोटेड कामन मुक्तिबोध रचनावली खंड 5। मुक्तिबोध के फैंटेसी अपनी कविता में ऐसे ही समावेशी रूप में उपलब्ध होता है। अंधेरे में कविता के अंतर्गत फैंटेसी काव्य नायक के व्यक्तित्व के निज विशिष्ट स्थान को भी आरेखित करती है तथा उसके व्यक्तित्वांतरण के वर्गीय और सामाजिक स्थितियों को भी और यूं अपने काल की सापेक्षता में व्यक्तित्व और व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया को एक ज्ञानात्मक आयाम से जोड़ती है। मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में लिखा है कि फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप देती है वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनाने लगती है। अंधेरे में शीर्षक इस कथन का व्यावहारिक प्रतिफलन प्रतीत होती है। वह अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनाते हुए एक ऐसी कथा कह जाती है जो किसी पारंपरिक प्रबंध शिल्प के जरिए कविता में कही नहीं जा सकती थी। प्रबंध शिल्प के लिए जो प्रकीर्णता असह्य होती है, अंधेरे में की फैंटेसी उसे अपनी स्वप्न कथा मूलकता के सहारे पूरे कलात्मक संयम में सार लेती है और अपने नाटकीय मोड़ों में उसका उपयोग अर्थ के एक ऐसी व्यापक कौंद पैदा करने में कर लेती है जिसमें यह सत्य उजागर हो जाए जो मुक्तिबोध के इस पर्यवेक्षण में निहित है। हम जिस समाज, संस्कृति, परंपरा, युग और ऐतिहासिक आवर्त में रह रहे हैं उन सबका प्रभाव हमारे हृदय संस्कार करता है। हमारी अवस्था में जो कुछ है वह समाज प्रदत्त है, चाहे वह निष्कलुष अनिंद्य सौंदर्य का आदर्श ही क्यों न हो। हमारा सामाजिक व्यक्तित्व हमारी आत्मा है। आत्मा का सारा सार तत्व प्रकृत रूप में सामाजिक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष। अंधेरे में कि पूरे विस्तार के लगभग बीचों बीच एक पागल का चित्र आता है। यह बीच में रहकर फैंटेसी की ओर छोर को मानो हर तरह से प्रदीप्त फ्लैश करता है। इस पागल की पुकार अंधेरे में एक काव्यनायक हृदय की उस धक धक को और भी स्पष्ट करती है, जिसने कविता के शुरू में गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनिसा कुछ पास आता पागल पूछा था, वह कौन सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। और इस पागल की पुकार ही व्यक्तित्वांतरण की उन संभावनाओं को भी स्पष्ट करती है, जिससे लैस होकर काव्यनायक कविता के अंत में अपने दिल को इस बार एक भिन्न तरह से धड़कता पाता है। धड़कता है दिल की पुकारने को खुलता है मुंह के अकस्मात, वह दिखा वह फिर खो गया किसी जनयुथ में। इस पागल के आत्मोद्वय में गान का व्यंग तथाकथित आदर्शवादी सिद्धांतवादी मन की सारी असूयत का कच्चा चिट्ठा इस तरह सामने रख देता है कि अपने से मुंह चुराने का जरा भी मौका नहीं मिलने पाता। साक्षी काव्यनायक की यह स्थिति प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया खुद ही के सामने, निजी की ही घन मूर्ति छाया सा गहरा होने लगी, बहस लगने लगे परस्पर तमाचे। यह पागल मध्यवर्ग के संस्कार और उसके जीवन शैली में निहित अंतर्विरोधों के एक एक रग रेशों को उभार देता है। अंधेरे में के छठे बंद में एक जगह स्क्रीनिंग का जिक्र आया है, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थरोली। मिस्टर गुप्ता को आदताई सत्ता फांसीवादी दामन के तौर तरीके अपनाने पर अमादा पूंजीवादी सत्ता की ओर से काव्यनायक के स्क्रीनिंग के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन कवि मुक्तिबोध भारतीय समाज में आम मध्यवर्गीय व्यक्ति की स्क्रीनिंग के लिए जिस अपने प्रतिनिधि को प्रस्तावित करना चाहते हैं वह मानो यह पागल ही है। याद आता है एक पागल चरित्र की बड़ी हृदय द्रावक सोदेश संकल्पना सआदत हसन मंटो ने अपनी कहानी टोबा टेक सिंह में की थी। वहाँ उसके माध्यम से देश विभाजन की त्रासदी और विसंगति को उभारा गया था। वहाँ विभाजित होते हुए देश में अपनी भूमि और अपनी सामाजिक जड़ों से विच्छिन्न हो जाने का क्षोभ था। अंधेरे में कविता में आए पागल के सामने भारतीय समाज में वर्ग विभाजन की त्रासदी और विसंगति का परिवेश है। यहाँ वर्ग विभक्ति समाज में व्यक्तित्व की सही वर्गीय भूमि से विच्छिन्न बने रहने का क्षोभ टोबा टेक सिंह का पागल कहानी के प्रभाव को करुणा और पैथोस में घनीभूत करता है। अंधेरे में का पागल कविता के प्रभाव को केवल करुणा में ही नहीं एक तीखी ऊंच घुली प्रश्नाकूलता में संगणित करता है। मर गया देश, अरे रह गए तुम, इस पागल के स्वरों के लिए कवि की सटीक टिप्पणी है। करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, करुण के साथ रसाल। रसाल का श्लेष बहुत व्यंजक है। रसाल शब्द यहाँ केवल रसमय होने का ही अर्थ नहीं सालने वाला होने का अर्थ भी देता है। पागल के स्वर सुनने वाले के हृदय को सालते भी है, इस तरह की एक साथ वह आहत भी होता है, आत्मभर्त्सना के चलते और उद्दत भी होता है, आत्मश्लेषण के चलते आत्मसंघर्ष के लिए। मुक्तिबोध की गणना कामायनी के अच्छे आलोचकों में होती है। कामायनी पर पुनर्विचार करते हुए मुक्तिबोध उसकी विशाल फैंटेसी से प्रभावित होते हुए भी उसके संदेश में असहमति और संतोष के जो कण इकट्ठा करते हैं वे अंधेरे में के संयोजन में कवि मुक्तिबोध के काफी काम आते हैं। मुक्तिबोध ने कामायनी के मानवतावाद पर संदेह किया और उसकी तुलना में एक बेहतर मानवतावाद की परिभाषा करते हुए लिखा, इनोटेड कामा, मानवतावाद कमजोर चरित्रों को उभारता तो है किंतु उन पात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान कराकर उनके प्राकृतिगत वैषम्य के अमानवीय स्वरूप को उन्हीं के सामने उद्घाटित करते हुए वह उनके व्यक्तित्व का समाजीकरण मानवीकरण उपस्थित करता है। इनोटेड कामा बंद। मुक्तिबोध रचनावली खंड 4। अंधेरे में का पागल उसी मानवतावाद को चरितार्थ करता है। कामायनी के मनु को संबोधित करने में जो भूमिका श्रद्धा सर का उद्बोधन और लीला सर की शापवाणी अलग अलग निभाते हैं उसी भूमिका को मुक्तिबोध अभिषिप्त मानवतावाद के संदर्भ में निभाने का दायित्व अकेले अंधेरे में के इस पागल कंधों पर आ पड़ा है। श्रद्धा मनु के अकेलेपन और निसंगता पर बहुत ही मार्मिक सहानुभूति केवल प्रश्न चिन्ह लगाती है। अकेले तुम कैसे असहाय जिजन कर सकते तुच्छ विचार। अंधेरे में का पागल केवल प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाता बल्कि वह अकेलेपन और निसंगता में आत्मग्रस्त रहने के लिए व्यक्ति को कोसता भी है, धिक्कारता भी है। असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ईड़ा सर के शापवाणी मुक्तिबोध को सन 1953 की वास्तविकताओं को भी ठीक ठीक चित्रित करने वाली प्रतीत हुई थी, लेकिन अपने समय के संदर्भ में प्रसाद जी की दृष्टि की एक सीमा बताते हुए उन्होंने लिखा, इन कामा नई ऐतिहासिक शक्ति संपन्न विकासवान श्रमिक वर्गों की बल बुद्धि और आत्मविश्वासमयी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को वे न देख सके। वे यह नहीं देख सके कि भारत के गरीब मध्यवर्ग में अभी इतनी मानवतावादी जनतंत्र भावना शेष है कि वह क्रांतिकारी वर्गों की पिछली पंक्ति में ही क्यों न सही सामाजिक रूपांतरण का उत्तरदायित्व निभा सकता है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 4। अंधेरे में कपागल इसी अनदेखे रह गए को लेकर एक तीखा प्रश्न करता है, बताओ कि किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के जगहों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर। और हमें आत्मालोचन के लिए उद्यत करता है ताकि वैसे पत्थर बनने से हम बाज आ सके। आत्मालोचन द्वारा ही हम अपने अंतर्विरोधों से लड़ सकते हैं। हमें आत्मालोचना से गुरेज नहीं करना चाहिए। जॉर्ज लुकास द्वारा इतिहास और वर्ग चेतना में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए पागल हमें उद्बोधित करता है। मार्क्सवाद मुक्तिबोध की रचना भूमि को चिंतनगत उर्वरता देता है, या यूं कहें कि वह एक थाले की तरह होता है जिसमें मुक्तिबोध अपनी संघर्षशीलता के बीज बोते हैं। ठीक वैसे जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने योग के थाले में भक्ति का बीज बोया। अपने समय के भयानक अंधेरे में जूझने में उनके अनुभवों को मार्क्सवादी दर्शन शक्ति देता है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक जॉर्ज लुकाच ने मार्क्सवाद की एक आशावादी दर्शन के रूप में विशेषता बताते हुए लिखा है, यह सही है कि इस समय हमारी संस्कृति अंधकार से गुजर रही है, परंतु इतिहास दर्शन का भी यह दायित्व है कि वह निर्णय कर सके कि जो अंधकार छाया है हमारी संस्कृति की नियति है अथवा हमारी संस्कृति और हम एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं। अंततः हमारा उससे साक्षात्कार अवश्य होगा। बुर्जुआ सौंदर्य शास्त्रियों का विचार है कि इस अंधकार से निकलने का कोई भी मार्ग नहीं है, जबकि मार्क्सवादी विकास क्रम में इतिहास दर्शन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह यात्रा भले ही अनदेखी रह जाए परंतु वह एक निश्चित और सार्थक गंतव्य तक अवश्य ले जाएगी। ही नोटेड कामा बंद स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। मुक्तिबोध की भी मार्क्सवाद इस रूप में विश्वसनीय मालूम होता है, मगर साथ में इतना है कि वे अंधेरे में अपने साक्षात्कार को भी न तो निरर्थक मानते हैं न उसे अधिकार रहने देना चाहते हैं। वे पूरे साक्षात्कार क्रम को यात्रा के विभिन्न पड़ावों को अपनी कविता या अंधेरे में की स्वप्न कथा के विभिन्न मोड़ों के रूप में दर्शाते हैं। मुक्तिबोध ने जाना है कि मार्क्सवादी दर्शन एक यथार्थ दर्शन है, यथार्थ विकास का मानव संज्ञा के विकास का दर्शन है। अतः उसके लिए सर्वाधिक मूलभूत और महत्वपूर्ण है जीवन तथ्यों की वास्तविकता जो राजनीतिक समाज नीति और कला आदि को उपस्थित करती है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 5। अंधेरे में कविता में यह शर्त निभाने के लिए अंधेरा जहाँ एक और ऐसे परिपार्श्व या पृष्ठभूमि का काम करता है जिस पर कवि के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा पाए गए जीवन तथ्यों की रेखाएं अपनी पूरी चमक में देखी जा सके, वहीं वह अंधेरा स्वयं अपनी पहचान को भी मूर्त करता है, खासतौर से एक तिहरे रूप में। यूकुरिया अंधेरा यथास्थिति में अपना हित देखने वाली पूंजीवादी मानसिकता का अंधेरा है। इसमें सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग गाढ़ा होकर इस वास्तविकता का खड़ा एहसास करा देता है कि वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। दूसरी ओर यह मध्यवर्गीय संस्कारों का अंधेरा है जिसमें अपने व्यक्ति को अपने दुखों के दाग तमगों से मालूम होते हैं और अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना अच्छा लगता है और जिसमें बौद्धिक वर्ग कीर्तिदास किराए के विचारों का उद्भास बना रहता है। यह अंधेरा मध्यवर्ग को खुलकर अपनी सही भूमिका में संघर्षरत संजीवी वर्ग के साथ आने से रोकता है और लुकवाच के इस पर्यवेक्षण की याद दिलाता है। यदि वर्ग समाज को समग्रता में नहीं देख पाता और उसके साथ संपूर्ण निष्ठा से जुड़ पाने में अपने को समर्थ पाता है तो इस वर्ग की भूमिका द्वयम दर्जे की होगी। ऐसे वर्ग सर्वथा निष्क्रिय होते हैं, शासक और क्रांतिवारी वर्ग के बीच लुढ़कते हैं। मध्य वर्ग जब तक इस निष्क्रियता से इसे लुकवाच ने पैसिव कैप्टुलेशन कहा है नहीं उभरता तब तक वह क्रांतिकारी चेतना से पूरी तरह नहीं जुड़ पाता। मुक्तिबोध इसी को पश्चातपद होना कहते हैं, बढ़ता हूँ आगे उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। और इस तरह यह अंधेरा तीसरी ओर अपने सामग्रिक प्रभाव में सार्थक व्यक्ति की असमर्थता का अंधेरा बन जाता है। अंधेरे के इस तिहरे रूप में विश्लेषित करने का आशय यह नहीं है कि कविता में अंधेरे की कोई क्रमवार अलग अलग स्थितियां हैं, वस्तुतः मुक्तबोध व्यापक रूप में अपने भारतीय समाज में और व्यक्तिगत रूप में अपनी अभिव्यक्ति की परिधि में छाया अंधकार की आंखों में आंखें डालकर उसकी जटिलता और संश्लिष्टता के पर्द दर पर उभारते हैं। इसके लिए वे इतनी जद्दोजहद करते हैं कि उनकी कविता की काव्यात्मकता की चमड़ी भी कहीं कहीं उधड़ जाती है। भाषा अंधेरे में के तथ्यात्मक ढोंकों से बार बार टकरा कर कई बार उबड़ खाबड़ और कई बार निहायत सपाट हो जाती है, लेकिन सारी चोटों को कविता अपने कवि के दिए बिंबों के सहारे झेल लेती है, क्योंकि मुक्तिबोध अपने बिंबों का स्रोत बनाते हैं वेदना नदियों को। वेदना नदियां जिनकी की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब प्रसारित करती हैं प्रतिपल। ये वेदना नदियां मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति रागात्मकता को भी आत्मसात किए हुए हैं और समाजगत विवेक पीड़ा की गहराई को भी। इन्हें पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग और माओं के आंसू हैं। ये रंग और ये आंसू संबंधों की व्यक्तिगत संवेदना के संकेतक हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि व्यापक समाजगत चिंताओं से उस संवेदना को पृथक्कृत करके व्यक्ति को आत्मकेंद्रितता के गर्त में ढकेल दें। कमायनिकार की उसना दृष्टि में मुक्तिबोध को एक कमी खटकती थी कि विकासवान श्रमिक वर्गों की बलबुद्धि और आत्मविश्वास में क्रांतिकारी प्रवृत्ति को वे न देख सके। मुक्तिबोध एक ऐसी रचना दृष्टि का विकास करते हैं जिसमें यह कमी न रह जाए। अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध के पाठकों को जो वेदना नदियां मिलती हैं उनकी गहराई की था मुक्तिबोध केवल मध्य वर्ग की निजी संवेदना में नहीं लेते, बल्कि श्रमिक के संताप से लेते हैं। विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है जिसमें श्रमिक का संताप। ये वेदना नदियां हैं, वे नदियां नहीं हैं जो द्वीप भरती हैं और व्यक्ति को द्वीप के बिंब में ढालती हैं। ये वेदना नदियां वे हैं जिनका जल पीकर युवकों में व्यक्तित्वांतरण जाता होता है। उनके बहाव में शामिल होते हुए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में व्यक्ति को यह आशंका नहीं सताती कि हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, बल्कि यह दृढ़ विश्वास जगता है कि इन वेदना नदियों में द्रुतवेग बहती हैं शक्तियां निश्चय। यह विश्वास मार्क्स के इस विश्वास से जर्मन विचारधारा में व्यक्त मेल खाता है कि हरेक व्यक्ति को समुदाय में दूसरों से मिलकर ही यह सुयोग्य प्राप्त होता है कि वह अपनी क्षमताओं का सर्वतोमुखी विकास कर सके। इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी केवल समुदाय में ही संभव है।